छठवां अधिकार कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध। दोहा मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव। अर्थ अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शनादिक भाव पाए जाते हैं उनकी पुष्टता का कारण कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन है। उसका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है इसलिए इनका निरूपण करते हैं। कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धा आदि का निषेध। वहां जो हित के कर्ता नहीं है और उन्हें भ्रम से हित का कर्ता जानकर सेवन करें सो कुदेव हैं। उनका सेवन तीन प्रकार के प्रयोजन सहित करते हैं, कहीं तो मोक्ष का प्रयोजन है, कहीं परलोक का प्रयोजन है और कहीं इस लोक का प्रयोजन है। सो प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है इसलिए उनका सेवन मिथ्या भाव है वह बतलाते हैं। अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति का होना कहा है उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं परंतु मोक्ष होता नहीं है उनका वर्णन पहले अन्य मत अधिकार में कहा ही है तथा अन्य मत में कहे देवों को कितने ही परलोक में सुख होगा दुख नहीं होगा ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप ना उपजाने से होती है परंतु आप तो पाप उपजाता है और कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा तो वहां अन्याय ठहरा क्योंकि किसी को पाप का फल दे किसी को ना दे ऐसा तो है नहीं। जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर किसी का बुरा भला करने वाला नहीं है तथा उन देवों का सेवन करते हुए उन देवों का तो नाम देते हैं और अन्य जीवों की हिंसा करते हैं तथा भोजन नृत्यादि द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण करते हैं। सो पाप परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। हिंसा विषय कसायों को सब पाप कहते हैं और पाप का फल भी सब बुरा ही मानते हैं तथा कुदेवों के सेवन में हिंसा विषय आदि ही का अधिकार है इसलिए कुदेवों के सेवन से परलोक में भला नहीं होता। व्यंतरादिक का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध। तथा बहुत से जीव इस पर्याय संबंधी शत्रुनाशकादिक व रोगादि मिटाने धनादिक की व पुत्रादि की प्राप्ति इत्यादि दुख मिटाने व सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन सहित कुदेव आदि का सेवन करते हैं। हनुमान आदि को पूजते हैं, देवियों को पूजते हैं, गणगौर सांची आदि बनाकर पूजते हैं, चौथ शीतला दहाड़ी आदि को पूजते हैं, भूत प्रेत पितर विंतर आदि को पूजते हैं, सूर्य चंद्रमा शनिचर आदि ज्योतिषियों को पूजते हैं, पीर पैगंबर आदि को पूजते हैं, गाय घोड़ा आदि त्रियंचों को पूजते हैं, अग्नि जलादिक को पूजते हैं, शस्त्रादिक को पूजते हैं, अधिक क्या कहें रोड़ा इत्यादि को भी पूजते हैं। सो इस प्रकार कुदेव आदि का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमें से कितने ही तो कल्पना मात्र देव हैं इसलिए उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा तथा कितने ही व्यंतरादिक हैं सो वे किसी का भला बुरा करने को समर्थ नहीं हैं। यदि वे ही समर्थ होंगे तो वे ही कर्ता ठहरेंगे परंतु उनके करने से कुछ होता दिखाई नहीं देता। प्रसन्न होकर धनादिक नहीं दे सकते और द्वेषी होकर बुरा नहीं कर सकते। यहां कोई कहे दुख देते तो देखे जाते हैं, मानने से दुख देना रोक देते हैं। उत्तर इसके पाप का उदय हो तब उनके ऐसी ही कुतूहल बुद्धि होती है उससे वे चेष्टा करते हैं। चेष्टा करने से है दुखी होता है तथा वे कुतूहल से कुछ कहें और यह उनका कहा हुआ ना करे तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं तथा इसे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं। यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसा भी देखा जाता है कोई जीव उनको नहीं पूछते व उनकी निंदा करते हैं व वे भी उससे द्वेष करते हैं परंतु उसे दुख नहीं दे सकते। ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि अमुक हमको नहीं मानता, परंतु उस पर हमारा कुछ वश नहीं चलता, इसलिए व्यंतरादि कुछ करने में समर्थ नहीं है। इसके पुण्य पाप ही से सुख दुख होता है। उनके मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती। तथा ऐसा जानना, जो कल्पित देव हैं उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है, वह व्यंतरादिक द्वारा किया जाता है। कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था, पश्चात मरकर व्यंतरादि हुआ, वही किसी निमित्त से ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोक में उनको सेवन करने की प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत भोला किंचित चमत्कार देखकर उस कार्य में लग जाता है। जिस प्रकार जिन प्रतिमादि का भी अतिशय होना सुनते व देखते हैं, सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यंतरादिक होते हैं, उसी प्रकार कुदेवों का कोई चमत्कार होता है, वह उनके अनुचर व्यंतरादिक द्वारा किया होता है, ऐसा जानना। तथा अन्य मत में परमेश्वर ने भक्तों की सहाय की व प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहते हैं। वहां कितनी ही तो कल्पित बातें कही हैं, कितने ही उनके अनुचर व्यंतरादिक द्वारा किए गए कार्यों को परमेश्वर के किए कहते हैं। यदि परमेश्वर के किए हों तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्व प्रकार समर्थ हैं, भक्त को दुख किस लिए होने देगा। तथा आज भी देखते हैं कि मलेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्ति को विघ्न करते हैं। यदि परमेश्वर को ऐसे कार्यों का ज्ञान ना हो, सर्वज्ञपना नहीं रहता। जानने के पश्चात भी सहाय ना करें तो भक्त वत्सलता गई और सामर्थ्यहीन हुआ। तथा साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तों को सहाय की कहते हैं, वह झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है। फिर यदि कहोगे वैसी भक्ति नहीं है, तो मलिच्छों से तो भले हैं और मूर्ति आदि तो उसी की स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था। मलिच्छ पापियों का उदय होता है, सो परमेश्वर का किया है या नहीं? यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है, भक्तों को दुख देने वाले पैदा करता है, वहां भक्त वत्सलपना कैसे रहा? और परमेश्वर का किया नहीं होता तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुआ, इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है। कोई अनुचर व्यंतरादि की ही चमत्कार दिखलाता है, ऐसा ही निश्चय करना। यहां कोई पूछे कि कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है, कोई कुछ स्थान निवास आदि बतलाकर अपनी हीनता कहता है। पूछते हैं सो नहीं बतलाता, भ्रम रूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है, इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है? उत्तर, व्यंतरों में प्रभुत्व की अधिकता हीनता तो है, परंतु जो कुछ स्थान में निवासादिक बतलाकर हीनता दिखलाते हैं, वह तो कुतूहल से वचन कहते हैं, व्यंतर बालक की भांति कुतूहल करते रहते हैं। जिस प्रकार बालक कुतूहल द्वारा अपने को हीन दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनाता है, ऊंचे स्वर से रोता है, बाद में हंसने लग जाता है, उसी प्रकार व्यंतर चेष्टा करते हैं। यदि कुस्थान के निवासी हों तो उत्तम स्थान में आते हैं। वहां किसके लाने से आते हैं? अपने आप आते हैं तो अपनी शक्ति होने पर कुस्थान में किस लिए रहते हैं? इसलिए इनका ठिकाना तो जहां उत्पन्न होते हैं वहां इस पृथ्वी के नीचे व ऊपर हैं, सो मनोज्ञ है। कुतूहल के लिए जो चाहें सो कहते हैं। यदि इनको पीड़ा होती हो तो रोते रोते हंसने कैसे लग जाते हैं? इतना है कि मंत्रादिक की अचिंत शक्ति है, सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादि नहीं हो सकते, वह किंचित दुख उत्पन्न होता है, वह कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है, वह आप ही रह जाता है। इत्यादि मंत्र की शक्ति है, परंतु जलाना आदि नहीं होता। मंत्र वाले जलाया कहते हैं, वह फिर प्रकट हो जाता है, क्योंकि वैक्रियक शरीर का जलाना आदि संभव नहीं है। व्यंतरों के अवधि ज्ञान किसी को अल्प क्षेत्र काल जानने का है, किसी को बहुत है। वहां उनके इच्छा हो और अपने को ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्ष को पूछने पर उसका उत्तर देते हैं। अल्प ज्ञान हो तो अन्य महत ज्ञानी से पूछ आकर जवाब देते हैं। अपने को अल्प ज्ञान हो व इच्छा ना हो तो पूछने पर उसका उत्तर नहीं देते, ऐसा जानना। अल्प ज्ञान वाले व्यंतरादिक को उत्पन्न होने के पश्चात कितने काल ही पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है, फिर उसका स्मरण मात्र रहता है। इसलिए वहां इच्छा द्वारा आप चेष्टा करें तो करते हैं। पूर्व जन्म की बातें कहते हैं, कोई अन्य बात पूछे तो अवधि ज्ञान तो थोड़ा है, बिना जाने किस प्रकार कहें। जिसका उत्तर आप ना दे सकें व इच्छा ना हो, वहां मान कुतूहलादिक से उत्तर नहीं देते, बस झूठ बोलते हैं, ऐसा जानना। देवों में ऐसी शक्ति है कि अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित करते हैं। इसलिए नाना आकार आदि रूप आप होते हैं व अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं, अन्य जीव के शरीर को रोगादि युक्त करते हैं। यहां इतना है कि अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंदों को जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं। इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है, अन्य जीव के शरीर आदि को उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता, और पाप उदय हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यंतरादिक की शक्ति जानना। यहां कोई कहे, इतनी शक्ति जिनमें पाई जाए उनके मानने पूजने में क्या दोष? उत्तर, अपने पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते, पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते, तथा उनको पूजने से कोई पुण्य बंध नहीं होता, राग आदि की वृद्धि होने से पाप ही होता है। इसलिए उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करने वाला है, तथा व्यंतरादिक मनवाते हैं, पुजवाते हैं, वह कुतूहल करते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते। जो उनको माने पूजे उसी से कुतूहल करते रहते हैं, जो नहीं मानते पूजते उनसे कुछ नहीं कहते। यदि उनको प्रयोजन ही हो तो ना मानने पूजने वाले को बहुत दुखी करें, परंतु जिनके ना मानने पूजने का निश्चय है उससे कुछ भी कहते दिखाई नहीं देते, तथा प्रयोजन तो क्षुधादिक की पीड़ा हो तब हो, परंतु वह तो उनके व्यक्त होती नहीं है। यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? वह औरों को भोजनादि कराने को ही क्यों कहते हैं? इसलिए उनके कुतूहल मात्र क्रिया है, अपने में उनके कुतूहल का स्थान होने पर दुख होगा, हीनता होगी, इसलिए उनको मानना पूजना योग्य नहीं है। तथा कोई पूछे कि व्यंतर ऐसा कहते हैं, गया आदि में पिंडदान करो तो हमारी गति होगी, हम फिर नहीं आएंगे, सो क्या है? उत्तर, जीवों के पूर्व भव का संस्कार तो रहता ही है, व्यंतरों को भी पूर्व भव के स्मरण आदि से विशेष संस्कार हैं। इसलिए पूर्व भव में ऐसी ही वासना थी, गयादिक में पिंड दान आदि करने पर गति होती है, इसलिए ऐसे कार्य करने को कहते हैं। यदि मुसलमान आदि मरकर व्यंतर होते हैं वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो अपने संस्कार रूप ही वचन कहते हैं। इसलिए सर्व व्यंतरों की गति उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा जानना। इस प्रकार व्यंतर आदि का स्वरूप जानना, तथा सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, उनको पूजते हैं, वह भी भ्रम है। सूर्य आदि को परमेश्वर का अंश मानकर पूजते हैं, परंतु उसके तो एक प्रकाश की ही अधिकता भासित होती है, सो प्रकाशवान तो अन्य रत्नाधिक भी होते हैं। अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वर का अंश माने, तथा चंद्रमादिक को धनादिक की प्राप्ति के अर्थ पूछते हैं, परंतु उनके पूजने से ही धन होता हो तो सर्वदरिद्री इस कार्य को करें, इसलिए यह मिथ्या भाव है। तथा ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजनादिक करते हैं, इसके अर्थ दानादिक देते हैं। सो जिस प्रकार हिरणादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं और प्राणी के यथासंभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। कोई तो उनका पूजनादि करते हैं, उनके भी इष्ट नहीं होता, कोई नहीं करता उसके भी इष्ट होता है, इसलिए उनका पूजनादि करना मिथ्या भाव है। यहां कोई कहे देना तो पुण्य है सो भला ही है, उत्तर धर्म के अर्थ देना पुण्य है, यह तो दुख के भय से व सुख के लोभ से देते हैं इसलिए पाप ही है, इत्यादि अनेक प्रकार से ज्योतिषी देवों को पूजते हैं सो मिथ्या है। तथा देवी दहाड़ी आदि हैं, वे कितनी ही तो व्यंतरी व ज्योतिषनी हैं, उनका अन्यथा स्वरूप मानकर पूजनादि करते हैं, कितनी ही कल्पित हैं सो उनकी कल्पना करके पूजनादि करते हैं। इस प्रकार व्यंतरादिक के पूजने का निषेध किया, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध। यहां कोई कहे क्षेत्रपाल दहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जो जिनमत का अनुसरण करते हैं उनके पूजनादि करने में दोष नहीं है, उत्तर जिनमत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है और देवों के संयम होता ही नहीं, तथा इनको सम्यक्त्व मानकर पूजते हैं सो भवनत्रिक में सम्यक्त्व की भी मुख्यता नहीं है। यदि सम्यक्त्व से ही पूजते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि के देव लोकांतिक देव उन्हें ही क्यों ना पूजें? फिर कहोगे इनके जिन भक्ति विशेष है सो भक्ति की विशेषता सौधर्म इंद्र के भी है, वह सम्यक दृष्टि भी है, उसे छोड़कर इन्हें किस लिए पूजें? फिर यदि कहोगे जिस प्रकार राजा के प्रतिहार आदिक हैं उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपाल आदिक हैं, परंतु समवसरण आदि में इनका अधिकार नहीं है, यह तो झूठी मान्यता है। तथा जिस प्रकार प्रतिहार आदिक के मिलाने पर राजा से मिलते हैं उसी प्रकार यह तीर्थंकर से नहीं मिलाते, वहां तो जिनकी भक्ति हो वही तीर्थंकर के दर्शनादिक करता है, कुछ किसी के अधीन नहीं है। तथा देखो अज्ञानता, आयुदादि सहित रौद्र स्वरूप है जिनका, उनकी गा गा कर भक्ति करते हैं, सो जिन मत में भी रौद्र रूप पूज्य हुआ तो यह भी अन्य मत के ही समान हुआ। तीव्र मिथ्यात्व भाव से जिन मत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है, इस प्रकार क्षेत्रपाल आदि को भी पूजने योग्य नहीं है। तथा गाय सर्प आदि त्रियंच हैं, वे प्रत्यक्ष ही अपने से हीन भाषित होते हैं, उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं, उनकी निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष अग्नि जलादिक स्थावर हैं, वे त्रियंचों से भी अत्यंत हीन अवस्था को प्राप्त देखे जाते हैं। तथा शस्त्र दवात आदि अचेतन हैं, वे सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, उनमें पूज्यपने का उपचार भी संभव नहीं है, इसलिए इनका पूजना महामिथ्या भाव है। इनको पूजने से प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भाषित नहीं होती, इसलिए इनको पूजना योग्य नहीं है। इस प्रकार सर्व ही कुदेवों को पूजना मानना निषिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्व की महिमा, लोक में अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंदे मानते हैं और मोहित होकर रोड़ों तक को पूजते हुए भी निंदपना नहीं मानते। तथा लोक में तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने उसकी सेवा करते हैं और मोहित होकर कुदेवों से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, ऐसा बिना विचारे ही कुदेवों का सेवन करते हैं तथा कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं है। और किसी पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इसके सेवन से यह कार्य हुआ, तथा कुदेवादि का सेवन किए बिना जो इष्ट कार्य हों उन्हें तो गिनता नहीं है। और कोई अनिष्ट हो जाए तो कहता है इसका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ। इतना नहीं विचारता कि इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो तो जो पूजते हैं उनके इष्ट होगा, नहीं पूजते उनके अनिष्ट होगा, परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार किसी के शीतला को बहुत मानने पर भी पुत्रादि मरते देखे जाते हैं, किसी के बिना माने भी जीते देखे जाते हैं, इसलिए शीतला का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। यहां कोई कहे कार्यकारी नहीं है तो ना हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। उत्तर, यदि बिगाड़ ना हो तो हम किस लिए निषेध करें। परंतु एक तो मिथ्यात्वादिक दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, यह बड़ा बिगाड़ है, और दूसरे पापबंध होने से आगामी दुख पाते हैं, यह बिगाड़ है। यहां पूछे कि मिथ्यात्वादिक भाव तो अतत्व श्रद्धा आदि होने पर होते हैं और पापबंध खोटे कार्य करने से होता है, सो उनके मानने से मिथ्यात्वादिक व पापबंध किस प्रकार होंगे। उत्तर, प्रथम तो परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु है नहीं, तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसका कारण पुण्य पाप है, इसलिए जैसे पुण्यबंध हो पापबंध ना हो वह करना, तथा यदि कर्म उदय का भी निश्चय ना हो और इष्ट अनिष्ट के बाह कारणों के संयोग वियोग का उपाय करे, परंतु कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है, तथा उससे पुण्यबंध भी नहीं होता पापबंध होता है, तथा कुदेव किसी को धनादिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिए ये बाह कारण भी नहीं है। इनकी मान्यता किस अर्थ से की जाती है? जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी ना हो और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेवों की मान्यता होती है। ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादी भाव होने पर मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है। कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध। आगे कुगुरु के श्रद्धानादिक का निषेध करते हैं। जो जीव विषय कसायादि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, धर्मात्मा के योग नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं, अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं, इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, वे सब कुगुरु जानना। क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कसाय आदि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। कुलादि अपेक्षा गुरुपने का निषेध। वहां कितने ही तो कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं, उनमें कुछ ब्राह्मण आदि तो कहते हैं हमारा कुल ही ऊंचा है इसलिए हम सबके गुरु हैं, परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने? यदि कुल में उत्पन्न होने से ही उच्चपना रहे तो मांस भक्षण आदि करने पर भी उसे उच्च ही मानो, सो वह बनता नहीं है। भारत ग्रंथ में भी अनेक ब्राह्मण कहे हैं, वहां जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण कहना, ऐसा कहा है। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किस लिए दी है? तथा वैष्णव शास्त्रों में ऐसा भी कहते हैं, वेद व्यास आदि मछली आदि से उत्पन्न हुए हैं, वहां कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा? तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हैं, इसलिए सबका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे रहा? तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुष से, नीच कुल की स्त्री के उच्च कुल के पुरुष से संगम होने से संतति होती देखी जाती है, वहां कुल का प्रमाण किस प्रकार रहा? यदि कदाचित कहोगे ऐसा है तो उच्च नीच कुल के विभाग किस लिए मानते हो, सो लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति भी संभव है, धर्म कार्य में तो असत्यता संभव नहीं है, इसलिए धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा महंतपना संभव नहीं है, धर्म साधन ही से महंतपना होता है, ब्राह्मण आदि कुलों में महंतता है सो धर्म प्रवृत्ति से है, धर्म प्रवृत्ति को छोड़कर हिंसादि पाप में प्रवर्तने से महंतपना किस प्रकार रहेगा? तथा कोई कहते हैं कि हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, हम उनकी संतति में हैं, इसलिए हम गुरु हैं, परंतु उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं। यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो तो उत्तम पुरुष की संतति में जो उत्तम कार्य ना करे उसे उत्तम किस लिए मानते हो? शास्त्रों में व लोक में यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्य करके उच्च पद प्राप्त करता है, पुत्र अशुभ कार्य करके नीच पदों को प्राप्त करता है, पिता अशुभ कार्य करके नीच पद को प्राप्त करता है, पुत्र शुभ कार्य करके उच्च पद को प्राप्त करता है, इसलिए बड़ों की अपेक्षा महंत मानना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुल द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या भाव जानना, तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पूर्व काल में कोई महंत पुरुष हुआ हो, उसकी गादी पर जो शिष्य प्रतिशिष्य होते आए हों, उनमें उस महत पुरुष जैसे गुण ना होने पर गुरुपना मानते हैं। यदि ऐसा ही हो तो उस गादी में कोई पर स्त्री गमनादि महापापकारी करेगा, वह भी धर्मात्मा होगा, सुगति को प्राप्त होगा, परंतु यह संभव नहीं है, और वह पापी है तो गादी का अधिकार कहाँ रहा? जो गुरुपद योग्य कार्य करे वही गुरु है। तथा कितने ही पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे, बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके गृहस्थ हुए, उनकी संतति अपने को गुरु मानती है, परंतु भ्रष्ट होने के बाद गुरुपना किस प्रकार रहा? अन्य गृहस्थों के समान यह भी हुए, इतना विशेष हुआ कि यह भ्रष्ट होकर ग्रस्त हुए, इन्हें मूल गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माने? तथा कितने ही अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं, एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरुपना मानते हैं, परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है, हिंसा परिग्रह आदि भी पाप हैं, उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने? तथा वह धर्म बुद्धि से विवाह आदि का त्यागी नहीं हुआ है, परंतु किसी आजीव का व लज्जा आदि प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता, यदि धर्म बुद्धि होती तो हिंसादि किस लिए बढ़ाता? तथा जिसके धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की भी दृढ़ता नहीं रहती, और विवाह नहीं करता तब पर स्त्री गमनादि महापाप उत्पन्न करता है, ऐसी क्रिया होने पर गुरुपना मानना महाभ्रष्ट बुद्धि है। तथा कितने ही किसी प्रकार का भेष धारण करने से गुरुपना मानते हैं, परंतु भेष धारण करने से कौन सा धर्म हुआ कि जिससे धर्मात्मा गुरु माने? वहां कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहनते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई टाट पहनते हैं, कोई मृगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं, परंतु यदि शीत्र उष्णादिक नहीं सहे जाते थे, लज्जा नहीं छूटी थी, तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्रादि का त्याग किस लिए किया? उनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनाने में धर्म का कौन सा अंग हुआ? गृहस्थों को ठगने के अर्थ ऐसे भेष जानना। यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जाएंगे? और इन्हें उनके द्वारा आजीविका व धनादिक व मानादिक का प्रयोजन साधना है, इसलिए ऐसे स्वांग बनाते हैं। भोला जगत उस स्वांग को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है, परंतु यह भ्रम है। यही कहा है, जह कुवि वैसारत्तो मुसिज्ज माणो विमर्णये हरिसम, तह मिछवे समुसिया गयम पीणा मुड़ंती धम्मणीहिम। अर्थ, जैसे कोई वैश्याशक्त पुरुष धनादि को ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं, उसी प्रकार मिथ्यावेश द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म धन को नहीं जानते। भावार्थ, इन मिथ्यावेश वाले जीवों की शुश्रूषा आदि से अपना धर्म साधन नष्ट होता है, उसका विषाद नहीं है। मिथ्या बुद्धि से हर्ष करते हैं, वहां कोई तो मिथ्या शास्त्रों में जो वेश निरूपित किए हैं उनको धारण करते हैं, परंतु उन शास्त्रों के कर्ता पापियों ने सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में हमारी मान्यता होगी व अन्य बहुत जीव इस मार्ग में लग जाएंगे। इस अभिप्राय से मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परंपरा से विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि सुगम क्रिया से उच्च पद होना बतलाते हैं, सो यहां कुछ दगा है। भ्रम से उनके कहे हुए मार्ग में प्रवर्तते हैं, तथा कोई शास्त्रों में तो कठिन मार्ग निरूपित किया है, वह तो सधेगा नहीं और अपना ऊंचा नाम धराए बिना लोग मानेंगे नहीं। इस अभिप्राय से यति, मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, सन्यासी, योगी, तपस्वी, नग्न इत्यादि नाम तो ऊंचा रखते हैं और इनके आचारों को साध नहीं सकते, इसलिए इच्छा अनुसार नाना वेश बनाते हैं तथा कितने ही अपनी इच्छा अनुसार ही नवीन नाम धारण करते हैं और इच्छा अनुसार ही वेश बनाते हैं। इस प्रकार अनेक वेश धारण करने से गुरुपना मानते हैं, सो यह मिथ्या है। यहां कोई पूछे कि वेश तो बहुत प्रकार के दिखते हैं, उनमें सच्चे झूठे वेश की पहचान किस प्रकार होगी? समाधान, जिन वेशों में विषय कसाय का किंचित लगाव नहीं है वे वेश सच्चे हैं। वे सच्चे वेश तीन प्रकार के हैं, अन्य सर्व वेश मिथ्या है। वही सटपाहुड़ में कुंदकुंदाचार्य ने कहा है, एगम जिनस रूपम विदियम उक्खिट सावयाणम तु अवर दिट्ठयाण तैयम चौत्यपुण लिंग दंशरमणत्थि। अर्थ, एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का रूप दसवीं ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावक का लिंग, तीसरा आरिकाओं का रूप यह स्त्रियों का लिंग, ऐसे यह तीन लिंग तो श्रद्धान पूर्वक हैं तथा चौथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। भावार्थ, इन तीन लिंग के अतिरिक्त अन्य लिंग को जो मानता है वह श्रद्धानी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तथा इन वेशियों में कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं। जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं। यहां कोई कहे कि जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा? उत्तर, जिस प्रकार उपवास का नाम रखकर कणमात्र भी भक्षण करे तो पापी है और एकासन का नाम रखाकर किंचित कम भोजन करे तब भी धर्मात्मा है, उसी प्रकार उच्च पदवी का नाम रखाकर उसमें किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते तो महापापी है। और नीची पदवी का नाम रखाकर किंचित भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा है। इसलिए धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोष नहीं है। परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीच क्रिया करने से तो महापाप ही होता है। वही सटपाहुड़ में कुंदकुंदाचार्य ने कहा है, जह जाय रूप सरिसो तिल तू समेत तमणा गिहदिहत्तेसु, जय ले अप बहुयम तत्तोपुण जायिणिगुत्तम। अर्थ, मुनि पद है वही यथा जात रूप शद्रस है, जैसा जन्म होते हुए था वैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ यानी धन वस्त्रादिक वस्तुएं उनमें तिल के तुस मात्र भी ग्रहण नहीं करता। यदि कदाचित अल्प व बहुत ग्रहण करे तो उससे निगोद जाता है। सो यहां देखो, गृहस्थपने में बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे तो भी स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी होता है, और मुनिपने में किंचित परिग्रह अंगीकार करने पर भी निगोदगामी होता है। इसलिए ऊंचा नाम रखाकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है। देखो, हुंडा अपसर्पणी काल में यह कली काल वर्त रहा है। इसके दोष से जिन मत में मुनि का स्वरूप तो ऐसा है, जहां बाह्यभ्यंतर परिग्रह का लगाव नहीं है, केवल अपने आत्मा का आप रूप अनुभवन करते हुए शुभाशुभ भावों से उदासीन रहते हैं और अविषय कषायासक्त जीव मुनि पद धारण करते हैं। वहां सर्व सावध के त्यागी होकर पंच महाव्रतादि अंगीकार करते हैं, श्वेत रक्तादि वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, भोजनादि में लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति बढ़ाने में उद्यमी होते हैं, वह कितने ही धनादिक भी रखते हैं, हिंसादिक करते हैं व नाना आरंभ करते हैं, परंतु अल्प परिग्रह ग्रहण करने का फल निगोद कहा है। तब ऐसे पापों का फल तो अनंत संसार होगा ही होगा। लोगों की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं, और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं, उनका मुनिवत सम्मान आदि करते हैं। सो शास्त्र में कृत कारित अनुमोदना का फल कहा है, इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगता है। मुनि पद लेने का क्रम तो यह है, पहले तत्व ज्ञान होता है, पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, परिसहादि सहने की शक्ति होती है, तब वह स्वयमेव मुनि होना चाहता है, और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। यह कैसी विपरीतता है कि तत्व ज्ञान रहित विषय कषायासक्त जीवों को माया से व लोभ दिखाकर मुनि पद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा अन्याय है। इस प्रकार कुगुरु का व उनके सेवन का निषेध किया। अब इस कथन को दृढ़ करने के लिए शास्त्रों की साक्षी देते हैं। वहां उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में ऐसा कहा है, गुर्णो भट्टा जाया सद्दे थुणि ऊण लिंति दाणायम, दोणवि अमुणिय सारा दुस्मी समयम मि बुढ़ंति। काल दोष से गुरु जो हैं वे तो भाट हुए, भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। सो इस दुसम काल में दोनों ही दातार व पात्र संसार में डूबते हैं, तथा वहां कहा है, सप्पे दिठे नासाई लोड़ नहीं को भी किम्पी अखेई, जो चई कुगुरु सप्पम हा मूड़ा भड़ई तम दुठम। अर्थ, सर्प को देखकर कोई भागे उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते, हाय हाय देखो तो जो कुगुरु सर्प को छोड़ते हैं उसे मूढ़ लोग दुष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं। सप्पो इक्कम मरणम कुगुरु अनंताई देह मरणायम, तोवर सप्पम गहियम मा कुगुरु सेवणम भद्दम। अहो, सर्प द्वारा तो एक बार मरण होता है और कुगुरु अनंत मरण देता है, अनंत बार जन्म मरण कराता है, इसलिए हे भद्र सर्प का ग्रहण तो भला और कुगुरु का सेवन भला नहीं। वहां और भी गाथाएं यह श्रद्धान दृढ़ करने को कारण बहुत कही है, सो इस ग्रंथ से जान लेना। तथा संघ पट्ट में ऐसा कहा है, च्युत क्षमा किल कोपि रंक शिशु का प्रव्रज चैते क्वचित कृत्वा किंचन पक्ष मक्षत कलिहि प्राप्तास्तदाचार्यकम् चित्रम चैत्र ग्रहे ग्रहीयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति स्वं शक्रियति बालिशीयति बुधान विश्व बराकीयति। अर्थ, देखो शुदा से क्रस किसी रंग का बालक कहीं चैत्यालय आदि में दीक्षा धारण करके पाप रहित न होता हुआ किसी पक्ष द्वारा आचार्य पद को प्राप्त हुआ। वह चैत्यालय में अपने ग्रहवत प्रवर्तता है, निज गच्छ में कुटुंबवत प्रवर्तता है, अपने को इंद्रवत महान मानता है, ज्ञानियों को बालवत अज्ञानी मानता है, सर्व गृहस्थों को रंगवत मानता है, सो यह बड़ा आश्चर्य हुआ है। तथा यर जातो नच वर्धितो नच नाचा क्रीतो इत्यादि काव्य है। उसका अर्थ ऐसा है, जिनसे जन्म नहीं हुआ है, बड़ा नहीं है, मोल नहीं लिया है, देनदार नहीं हुआ है इत्यादि कोई प्रकार संबंध नहीं है और गृहस्थों को वृषभवत हाँकते हैं, जबरदस्ती दान आदि लेते हैं, सो हाय हाय यह जगत राजा से रहित है, कोई न्याय पूछने वाला नहीं है। इस प्रकार वहां श्रद्धान के पोषक काव्य हैं, सो उस ग्रंथ से जानना। यहां कोई कहता है यह तो श्वेतांबर विरचित उपदेश है, उसकी साक्षी किस लिए दी? उत्तर, जैसे नीचा पुरुष जिसका निषेध करे उसका उत्तम पुरुष के तो सहज ही निषेध हुआ, उसी प्रकार जिनके वस्त्रादिक उपकरण कहे वे ही जिनका निषेध करें तब दिगंबर धर्म में तो ऐसी विपरीतता का सहज ही निषेध हुआ। तथा दिगंबर ग्रंथों में भी इस श्रद्धान के पोषक वचन हैं। वहां श्री कुंदकुंदाचारी कृत सटपाहुड़ में ऐसा कहा है, दंसन मूलो धम्मो उव इट्ठो जिणवरेहिम सिसाणम तमसो ऊण सक्कणे दंसन हीणोणावन दिव्यो। अर्थ, सम्यक दर्शन है मूल जिसका, ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म है, उसे सुनकर हे कर्ण सहित पुरुषो यह मानो कि सम्यक रहित जीव वंदना योग्य नहीं है। जो आप कुगुरु के श्रद्धान सहित सम्यक्त्वी कैसे हो सकता है? बिना सम्यक्त अन्य धर्म भी नहीं होता, धर्म के बिना वंदने योग्य कैसे होगा? फिर कहते हैं, जे दंसणेशु भट्टा राणे भट्टा चरित्र भट्टाया एदे भट्ट भी भट्टा से संपि जड़म विणा संति। जो दर्शन में भ्रष्ट हैं, ज्ञान में भ्रष्ट हैं, चारित्र भ्रष्ट हैं, वे जीव भ्रष्ट से भ्रष्ट हैं, और भी जीव जो उनका उपदेश मानते हैं उन जीवों का नाश करते हैं, बुरा करते हैं। फिर कहते हैं, जे दंसणेशु भट्टा पाए पाणंति दंस धराणम ते होन्ति लल्ल मुआ बोही पुण दुल्लहा तेन सिम। जो आप तो सम्यक्त से भ्रष्ट हैं और सम्यक्त धारियों को अपने पैरों पड़वाना चाहते हैं, वे लूले गूंगे होते हैं अर्थात स्थावर होते हैं, तथा उनके बोधि की प्राप्ति महा दुर्लभ होती है। जेवी पणंति च ते सिम जानंता लज्जा गारव भयेण तेन सिम पिणत्थि बोही पावम अनुमोय माणाणम। जो जानते हुए भी लज्जा गारव और भय से उनके पैरों पड़ते हैं, उनके भी बोधि अर्थात सम्यक्त नहीं है। कैसे हैं वे जीव? पाप की अनुमोदना करते हैं, पापियों का सम्मान आदि करने से भी उस पाप की अनुमोदना का फल लगता है। तथा कहते हैं, जस परिग्रह गहणम अपम बहुयम च हवई लिंगस सोगर हियु जिन वैणे परिग्रह रहियो निर्णा यारो। जिस लिंग के थोड़ा व बहुत परिग्रह का अंगीकार हो वह जिन वचन में निंदा योग्य है परिग्रह रहित ही अनगार होता है। तथा कहते हैं धम्मम मि णिप्य वासो दोसा वासो या उच्च फुल्ल समो णिफल निगुण यारो रण सवणो नग्य रूपेण। अर्थ जो धर्म में निरुद्यमी है दोषों का घर है इच्छु फूल समान निष्फल है गुण के आचरण से रहित है वह नग्न रूप से नट श्रमण है भांडवत वेशधारी है। अब नग्न होने पर भांड का दृष्टांत संभव है परिग्रह रखे तो यह दृष्टांत भी नहीं बनता। जे पाव मोह्यमयी लिंगम धेतूणा जिण वरिंदाणम पावम कुणंती पावा ते चत्ता मोक्ष मग्गम्मी। अर्थ पाप से मोहित हुई है बुद्धि जिनकी ऐसे जो जीव जिनवरों का लिंग धारण करके पाप करते हैं वे पाप मूर्ति मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। तथा ऐसा कहा है जे पंच चेल सत्ता गंथक गाही या जायना सीला आधा कमम्मी रयाते चत्ता मोक्ष मग्गम्मी। अर्थ जो पंच प्रकार वस्त्र में आसक्त हैं परिग्रह को ग्रहण करने वाले हैं याचना सहित हैं अधा कर्म दोषों में रत हैं उन्हें मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट जानना। और भी गाथा सूत्र वहां उस श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए कहे हैं वे वहां से जानना। तथा कुंद कुंदाचारी कृत लिंग पाहुड़ है उसमें मुनि लिंग धारण करके जो हिंसा आरंभ यंत्र मंत्रादि करते हैं उनका बहुत निषेध किया है। तथा गुणभद्राचारी कृत आत्मानुशासन में ऐसा कहा है इतस्त ततश्च त्रयस्यन्तो विभाववर्याम यथा मृगः वनाद वस्यन्तु ग्रामम कलौ कष्टम तपस्विनः। अर्थ कली काल में तपस्वी मृग की भांति इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर के समीप वास करते हैं यह महाखेदकारी कार्य है। यहां नगर के समीप ही रहने का निषेध किया तो नगर में रहना तो निषिद्ध हुआ ही। वरम गार्हस्थमेवात्य तप्सो भावी जन्मनः सुसिस्त्री कटाक्ष लुंठणाक लुप्त वैराग्य संपदाः। अर्थ होने वाला है अनंत संसार जिससे ऐसे तप से गृहस्थ पना ही भला है। कैसा है वह तप प्रभात होते ही स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य संपदा लुट गई है ऐसा है। तथा योगींद्र देवकृत परमात्म प्रकाश में ऐसा कहा है चिल्ला चिल्ली पुत्थी यहिम तूसई मूण निभंतु ए यहिम लज्जे राणी हूं बंद हम हेउ मुणंतु। चेला चेली और पुस्तकों द्वारा मूड संतुष्ट होता है भ्रांति रहित ऐसा ज्ञानी उन्हें बंध का कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। केणवि अप्पौ वंचीयु सिरुलुंचिवि क्षारेण सैलवि संगणा परिहरिये जिणवर लिंग धरेण। किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया वह कौन कि जिस जीव ने जिनवर का लिंग धारण किया और राख से सिर का लोंच किया परंतु समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा। जे जिन लिंगु धरे भी मुनि इठ परिग्रह लिंती छद्दि करे विणु तेजी जिये सापुणु छद्दि गिलंती। अर्थ हे जीव जो मुनि जिन लिंग धारण करके इष्ट परिग्रह को ग्रहण करते हैं वे छर्दी अर्थात उल्टी करके उसी छर्दी का पुनः भक्षण करते हैं अर्थात निंदनीय हैं इत्यादि वहां कहते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में कुगुरु का व उनके आचरण का व उनकी शुश्रूषा का निषेध किया है सो जानना। तथा जहां मुनि को धात्री दूत आदि 46 दोष आहार आदि में कहे हैं वहां गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न करना समाचार कहना, मंत्र औषधि ज्योतिषी आदि कार्य बतलाना तथा किया कराया अनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाओं का निषेध किया है, परंतु अब काल दोष से इन्हीं दोषों को लगाकर आहार आदि ग्रहण करते हैं तथा पार्श्वस्थ कुशील आदि भ्रष्टाचारी मुनियों का निषेध किया है, उन्हीं के लक्षणों को धारण करते हैं। इतना विशेष है कि वे द्रव्य से तो नग्न रहते हैं, यह नाना परिग्रह रखते हैं तथा वहां मुनियों के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है, परंतु यह आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि का ग्रहण करते हैं तथा जो गृहस्थ धर्म में भी उचित नहीं है वह अन्याय लोकनिंद पाप रूप कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं तथा जिन विंब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो अविनय करते हैं और आप उनसे भी महंतता रखकर ऊपर बैठना आदि प्रवृत्ति को धारण करते हैं इत्यादि अनेक विपरीतताएं प्रत्यक्ष भाषित होती हैं और अपने को मुनि मानते हैं, मूल गुण आदि के धारी कहलाते हैं, इस प्रकार अपनी महिमा कराते हैं और गृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंसादिक से ठगाते हुए धर्म का विचार नहीं करते, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं, परंतु बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना इस मिथ्यात्व का फल कैसे अनंत संसार नहीं होगा। शास्त्रों में एक जिन वचन को अन्यथा मानने से महापापी होना कहा है, यहां तो जिन वचन की कुछ बात ही नहीं रखी, तो इसके समान और पाप कौन है। शीतलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण। अब यहां कुयुक्ति द्वारा जो उन कुगुरुओं की स्थापना करते हैं उनका निराकरण करते हैं। वहां वह कहता है, गुरु बिना तो निगुड़ा कहलाएंगे और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं हैं, इसलिए इन्हीं को गुरु मानना। उत्तर, निगुड़ा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं, तथा जो गुरु को तो माने परंतु क्षेत्र में गुरु का लक्षण ना देखकर किसी को गुरु ना माने तो इस सिद्धांत से तो निगुड़ा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वर को मानता ही नहीं, और जो परमेश्वर को तो माने परंतु क्षेत्र में परमेश्वर का लक्षण ना देखकर किसी को परमेश्वर ना माने तो नास्तिक तो होता नहीं, उसी प्रकार यह जानना। फिर वह कहता है, जैन शास्त्रों में वर्तमान में केवली का तो अभाव कहा है, मुनि का तो अभाव नहीं कहा है। उत्तर, ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशों में सद्भाव रहेगा, परंतु भरत क्षेत्र में कहते हैं सो भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा इसलिए अभाव नहीं कहा है। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्र में सद्भाव मानोगे तो जहां ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहां जाओगे तब किसको गुरु मानोगे। जिस प्रकार हंसों का सद्भाव वर्तमान में कहा है परंतु हंस दिखाई नहीं देते तो और पक्षियों को तो हंस माना नहीं जाता, उसी प्रकार वर्तमान में मुनियों का सद्भाव कहा है परंतु मुनि दिखाई नहीं देते तो औरों को तो मुनि माना नहीं जा सकता। फिर वह कहता है, एक अक्षर के दाता को गुरु मानते हैं तो जो शास्त्र सिखलाएं व सुनाएं उन्हें गुरु कैसे ना माने। उत्तर, गुरु नाम बड़े का है, सो जिस प्रकार की महंतता जिसके संभव हो उसे उस प्रकार गुरु संज्ञा संभव है। जैसे कुल अपेक्षा माता पिता को गुरु संज्ञा है, उसी प्रकार विद्या पढ़ाने वाले को विद्या अपेक्षा गुरु संज्ञा है। यहां तो धर्म का अधिकार है, इसलिए जिसके धर्म अपेक्षा महंतता संभवित हो उसे गुरु जानना, परंतु धर्म नाम चारित्र का है, चारित्रम खलु धम्मो ऐसा शास्त्र में कहा है, इसलिए चारित्र के धारक को ही गुरु संज्ञा है। तथा जिस प्रकार भूतादि का नाम भी देव है, तथापि यहां देव के श्रद्धान में अरिहंत देव का ही ग्रहण है, उसी प्रकार औरों का भी नाम गुरु है, तथापि यहां श्रद्धान में निर्ग्रंथ का ही ग्रहण है, जैन धर्म में अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है। यहाँ प्रश्न है कि निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु नहीं मानते, सो क्या कारण है? उत्तर, निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार से महंतता धारण नहीं करते। जैसे लोभी शास्त्र व्याख्यान करे, वहां वह इसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ और यह उसे धन वस्त्रादि देने से महंत हुआ। यद्यपि बाह में शास्त्र सुनाने वाला महंत रहता है, तथापि अंतरंग में लोभी होता है, इसलिए सर्वथा महंतता नहीं हुई। यहां कोई कहे, निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं। उत्तर, लोभी होकर दातार की शुश्रूषा करके दीनता से आहार नहीं लेते, इसलिए महंतता नहीं घटती। जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है। इसी प्रकार अन्य जीव जानना, इसलिए निर्ग्रंथ ही सर्व प्रकार महंतता युक्त हैं। निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार गुणवान नहीं हैं, इसलिए गुणों की अपेक्षा महंतता और दोषों की अपेक्षा हीनता भासित होती है। तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। तथा निर्ग्रंथ सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वैसा वह उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं। वहां गुरु संज्ञा किसको होगी? इसलिए जो बाह्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि हैं, उन्हीं को गुरु जानना। यहां कोई कहे, ऐसे गुरु तो वर्तमान में यहां नहीं है, इसलिए जिस प्रकार अरिहंत की स्थापना प्रतिमा है, उसी प्रकार गुरुओं की स्थापना यह वेशधारी है। उत्तर, जिस प्रकार राजा की स्थापना चित्रादि द्वारा करे तो वह राजा का प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को राजा बनाए तो राजा का प्रतिपक्षी होता है। उसी प्रकार अरिहंत आदि की पाषाण आदि में स्थापना बनाए तो उसका प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि बनाए तो वह मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो अपने को अरिहंत भी मनाओ, और यदि उनकी स्थापना है तो वाह में तो वैसा ही होना चाहिए, परंतु वे निर्ग्रंथ यह बहुत परिग्रह के धारी यह कैसे बनता है? तथा कोई कहे, अब श्रावक भी तो जैसे संभव हैं वैसे नहीं हैं, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि। उत्तर, श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्वग्रहस्थ जैनियों की है। श्रेणिक भी असंयमी था, उसे उत्तर पुराण में श्रावक उत्तम कहा है। 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं, वहां सर्वव्रतधारी नहीं थे। यदि सर्वव्रतधारी होते तो असंयत मनुष्यों की अलग संख्या कही जाती, सो नहीं कही है, इसलिए गृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है। और मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवा कहीं नहीं है। तथा श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे हैं, इसलिए मध्य, मांस, मधु, 5 उदम्बर आदि फलों का भक्षण श्रावकों के है नहीं, इसलिए किसी प्रकार से श्रावकपना तो संभवित भी है, परंतु मुनि के 28 मूल गुण हैं, सो वेशियों के दिखाई ही नहीं देते, इसलिए मुनिपना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। तथा गृहस्थ अवस्था में तो पहले जम्बू कुमार आदि ने बहुत हिंसादि कार्य किए सुने जाते हैं, मुनि होकर तो किसी ने हिंसादि कार्य किए नहीं है, परिग्रह रखा नहीं है, इसलिए ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। देखो, आदिनाथ जी के साथ 4000 राजा दीक्षा लेकर पुनः भ्रष्ट हुए। तब देव उनसे कहने लगे, जिन लिंगी होकर अन्यथा प्रवर्तोगे तो हम दंड देंगे, जिन लिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो, इसलिए जिन लिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो दंड योग्य हैं, वंदनादि योग्य कैसे होंगे? अब अधिक क्या कहें, जिन मत में कुवेश धारण करते हैं वे महापाप करते हैं, अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी होते हैं। पद्म पुराण में यह कथा है कि श्रेष्ठी धर्मात्मा ने चारण मुनियों को भ्रम से भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तब जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट हैं उन्हें दानादिक देना कैसे संभव है? यहां कोई कहे हमारे अंतरंग में श्रद्धान तो सत्य है, परंतु बाह्य लज्जादि से शिष्टाचार करते हैं, सो फल तो अंतरंग का होगा। उत्तर, सत्पाहुण में लज्जादि से वंदनादि का निषेध बतलाया था, वह पहले ही कहा था, कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था, परंतु आप ही मानादिक से नमस्कार करें, वहां अंतरंग कैसे ना कहें? जैसे कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने, परंतु राजादिक को भला मनवाने को मांस भक्षण करे तो उसे वृत्ति कैसे माने? उसी प्रकार अंतरंग में तो कुगुरु सेवन को बुरा जाने, परंतु उनको व लोगों को भला मनवाने के लिए सेवन करे तो श्रद्धानी कैसे कहें? इसलिए बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है। इसलिए जो श्रद्धानी जीव हैं, उन्हें किसी प्रकार से भी कुगुरुओं की शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया। यहां कोई कहे किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ? उत्तर, जिस प्रकार शीलवती स्त्री पर पुरुष के साथ भर्तार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता, क्योंकि यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है। वहां राग आदि का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है, वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए जिसके वीतरागता पाई जाए उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है, जिनके रागादिक पाए जाएं उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार आदि नहीं करता। कोई कहे जिस प्रकार राजादिक को करता है उसी प्रकार इनको भी करता है? उत्तर, राजादिक धर्म पद्धति में नहीं है, गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है। राजादिक का सेवन तो लोभादिक से होता है, वहां चारित्र मोह का ही उदय संभव है, परंतु गुरु के स्थान पर कुगुरु का सेवन किया, वहां तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ, सो लज्जादिक से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की उसके कार्यभूत तत्व श्रद्धान में दृढ़ता कैसे संभव है? इसलिए वहां दर्शन मोह का उदय संभव है। इस प्रकार कुगुरुओं का निरूपण किया। कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध। अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो व विषय कसायों की वृद्धि हो, वहां धर्म माने सो कुधर्म जानना। यज्ञादिक क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों के विषय पोषण करें, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने सो कुधर्म है, तथा तीर्थों में व अन्यत्र स्नान आदि कार्य करे, वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है, शरीर को चैन मिलता है इसलिए विषय पोषण होता है और काम अधिक बढ़ते हैं, कुतूहलादि से वहां कसाय भाव बढ़ाता है और धर्म मानता है सो यह कुधर्म है, तथा संक्रांति ग्रहण व्यतिपादादिक में दान देता है व बुरे ग्रहादि के अर्थ दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है, दान देने में सुवर्ण हस्ती घोड़ा तिल आदि वस्तुओं को देता है, परंतु संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं है, ज्योतिषी के संचार आदि द्वारा संक्रांति आदि होते हैं, तथा दुष्ट ग्रह आदि के अर्थ दिया, वहां भय लोभ आदि की अधिकता हुई इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है, तथा लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते, भला तो तब होता है जब इसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करें, परंतु वह तो उल्टा पाप रूप प्रवर्तता है। पाप के सहायक का भला कैसे होगा, यही रयणसार शास्त्र में कहा है। सप्पुरिसाणम दाणम कप तरुणम फलाणम सोहम वा लोहीणम दाणम दई विमान सोहा सवस जानेह। अर्थ, सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्षों के फलों की शोभा समान है, शोभा भी है और सुखदायक भी है। तथा जो लोभी पुरुषों को दान देना होता है सो शव अर्थात मुर्दे की ठटरी की शोभा समान जानना। शोभा तो होती है परंतु मालिक को परम दुखदायक होती है, इसलिए लोभी पुरुषों को दान देने में धर्म नहीं है। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे उसके धर्म बढ़े, परंतु स्वर्ण हस्ती आदि देने से तो हिंसादिक उत्पन्न होते हैं और मान लोभादिक बढ़ते हैं, उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुओं को देने वाले के पुण्य कैसे होगा। तथा विषयासक्त जीव रति दान आदि में पुण्य ठहराते हैं, परंतु जहां प्रत्यक्ष कुशील आदि पाप हो वहां पुण्य कैसे होगा। तथा युक्ति मिलाने को कहते हैं कि वह स्त्री संतोष प्राप्त करती है, सो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती ही है, शील का उपदेश किस लिए दिया। रतिकाल के अतिरिक्त भी उसके मनोरथ ना प्रवर्तते तो दुख पाती है, सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। इसी प्रकार दया दान व पात्र दान के सिवा अन्न दान देकर धर्म मानना सर्व कुधर्म है। तथा व्रतादिक करके वहां हिंसादिक व विषयादिक बढ़ाते हैं, परंतु व्रतादिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। तथा जहां अन्न का तो त्याग करे और कंदमूल आदि का भक्षण करे वहां हिंसा विशेष हुई, स्वादादिक विषय विशेष हुए। तथा दिन में तो भोजन करता नहीं है और रात्रि में भोजन करता है, वहां प्रत्यक्ष ही दिन भोजन से रात्रि भोजन में विशेष हिंसा भासित होती है, प्रमाद विशेष होता है। तथा व्रतादि करके नाना श्रृंगार बनाता है, कुतूहल करता है, जुआ आदि रूप प्रवर्तता है, इत्यादि पाप क्रिया करता है। तथा व्रतादि का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के नाश को चाहता है, वहां कसायों की तीव्रता विशेष हुई। इस प्रकार व्रतादिक से धर्म मानता है सो कुधर्म है। तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं, गीत नृत्य गानादिक व इष्ट भोजनादिक व अन्य सामग्रियों द्वारा विषयों का पोषण करते हैं, कुतूहल प्रमाद आदि रूप प्रवर्तते हैं, वहां पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और धर्म का किंचित साधन नहीं है। वहां धर्म मानते हैं सो सब कुधर्म है। तथा कितने ही शरीर को तो क्लेश उत्पन्न करते हैं और वहां हिंसादिक उत्पन्न करते हैं, वह कसायादि रूप प्रवर्तते हैं। जैसे पंचाग्नि तपते हैं सो अग्नि से बड़े छोटे जीव जलते हैं, हिंसादिक बढ़ते हैं, इसमें धर्म क्या हुआ। तथा औंधे मुंह झूलते हैं, ऊर्ध्व बाहु रखते हैं, इत्यादि साधन करते हैं, वहां क्लेश ही होता है, यह कुछ धर्म के अंग नहीं है। तथा पवन साधन करते हैं, वहां नेति धोती इत्यादि कार्यों में जलादिक से हिंसादिक उत्पन्न होते हैं, कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानादिक बढ़ते हैं, वहां किंचित धर्म साधन नहीं है, इत्यादि क्लेश तो करते हैं। विषय कसाय घटाने का कोई साधन नहीं करते, अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है, वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं सो कुधर्म है। तथा कितने ही इस लोक में दुख सहन ना होने से व परलोक में इष्ट की इच्छा व अपनी पूजा बढ़ाने के अर्थ व किसी क्रोधादिक से आपघात करते हैं, जैसे पति वियोग से अग्नि में जलकर सती कहलाती है, वह हिमालय में गलते हैं, काशी में करौंत लेते हैं, जीवित मरण लेते हैं, इत्यादि कार्यों से धर्म मानते हैं। परंतु आपघात का तो महान पाप है। यदि शरीरादिक से अनुराग घटा था तो तपश्चरण आदि करना था, मर जाने में कौन धर्म का अंग हुआ? इसलिए आपघात करना कुधर्म है। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कुधर्म के अंग हैं। कहाँ तक कहें, जहाँ विषय कसाय बढ़ते हों और धर्म माने सो सब कुधर्म जानना। देखो काल का दोष, जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। जैन मत में जो धर्म पर्व कहे हैं वहां तो विषय कसाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है, उसे तो ग्रहण नहीं करते और व्रतादिक का नाम धारण करके वहां नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजन आदि करते हैं, कुतूहल आदि करते हैं व कसाय बढ़ाने के कार्य करते हैं, जुआ इत्यादि महान पाप रूप प्रवर्तते हैं। तथा पूजनादि कार्यों में उपदेश तो यह था कि सावद्दलेशो बहुपुण्य रासौ दोषाय नालम, बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है। इस छल द्वारा पूजा प्रभावनादि कार्यों में रात्रि में दीपक से व अनंत काय आदि के संग्रह द्वारा व अयत्नाचार प्रवृत्ति से हिंसादि रूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवर्तते व थोड़े प्रवर्तते हैं, सो वहां नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या कुछ नहीं। ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता है। तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है वहां नाना कुकथा करना, सोना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवर्तते हैं तथा वहाँ बागबाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कसाय का पोषण करते हैं तथा लोभी पुरुष को गुरु मानकर दानादिक देते हैं व उनकी असत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं, इत्यादि प्रकार से विषय कसायों को तो बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं, परंतु जिन धर्म तो वीतराग भाव रूप है उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोष से ही देखी जाती है। इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया। अब इसमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ सो कहते हैं। तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक यह है कि रागादिक छोड़ना, इसी भाव का नाम धर्म है। यदि रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने वहां तत्व श्रद्धान कैसे रहा? तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, रागादि भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना सो यह झूठा श्रद्धान हुआ। इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। इस प्रकार कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन में मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती जानकर इसका निरूपण किया। यही सटपाहुड़ में कहा है, कुच्छीय देवम धम्मम कुच्छी लिंगम च बंदे जोदु, लज्जा भय गारव वदो मिच्छा दिट्टी हवे सोहु। अर्थ, यदि लज्जा से भय से व बड़ाई से भी कुत्सित देव को, कुत्सित धर्म को व कुत्सित लिंग को वंदता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे वह पहले कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी हो। सम्यक्त के 25 मलों के त्याग में भी अमूढ़ दृष्टि में व षडायतन में इन्हीं का त्याग कराया है, इसलिए इनका अवश्य त्याग करना। तथा कुदेवादि के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है सो वह हिंसादिक पापों से बड़ा पाप है। इसके फल से निगोद नरकादि पर्याय पाई जाती हैं, वहां अनंत काल पर्यंत महासंकट पाया जाता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है। यही सटपाहुड़ में कहा है, कुच्छीय धम्मम मिरो कुच्छीय पाषंडी भत्ति संयुक्तो, कुच्छीय तवम कुणंतो कुच्छीय गई भायणो होई। अर्थ, जो कुत्सित धर्म में रत है, कुत्सित पाखंडियों की भक्ति से संयुक्त है, कुत्सित तप को करता है, वह जीव कुत्सित अर्थात खोटी गति को भोगने वाला होता है। सो हे भव्यो, किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेव आदि का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। जिन धर्म में यह तो आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसादिक के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वयथिष्टम् अद्यैव वास्तु मरणम् तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरः। कोई निंदा करता है तो निंदा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो। लक्ष्मी आओ व जहां तहां जाओ, तथा अभी मरण हो व युगांतर में हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं होते। ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसादिक के भय से, लोभादिक से अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। अहो, देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा? इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। कुदेव आदि का त्याग न करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है और वर्तमान में यहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है, इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया है। उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में कुदेव कुगुरु कुधर्म निषेध वर्णन रूप छठवां अधिकार समाप्त हुआ।